हरे कृष्ण आप लोग जयपुर से कौन कौन आए हैं? जयपुर बाहर से कौन कौन आए हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप लोग? बीना। ओ अच्छा, सब बीना से आए हैं। ओ अच्छा, मतलब बाहर से कौन कौन आए हैं? हाँ, बहुत धन्यवाद आप लोग आए हैं। ये यहाँ की मंदिर में आने का उद्देश्य क्या होता है? ये मंदिर भगवान की जगह है ना? मंदिर कब होता है? मकान और मंदिर में अंतर क्या है? जहां हम लोग ठहरते हैं वो है मकान, और जहां भगवान विराजमान है वो जगह है मंदिर। तो मंदिर में आने का उद्देश्य क्या होता है? मंदिर में आने का उद्देश्य होता है भगवान को दर्शन करना। तो जब मंदिर आते हैं तो हमको मानना पड़ेगा कि आप भगवान को मानते हैं, है ना? भगवान, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, भगवान कौन है? भगवान कौन है? अगर भगवान के बारे में हमको हम जानना चाहते हैं तो हमारे शास्त्र के माध्यम भगवान को दर्शन करना होगा। शास्त्र चक्षुषा, ये जो भौतिक आंखें जो हैं, ये शरीर के जो आंखें हैं, इस आंखों के द्वारा भगवान को दर्शन नहीं होता है। आंखों के द्वारा भगवान क्या, आंखों के द्वारा हम आत्मा को भी दर्शन नहीं कर पाते हैं। आत्मा क्या, आंखों के द्वारा हम अपना मन को भी दर्शन नहीं कर सकते, है ना? मन है, वो तो मानते हैं सबको मन है। तो मन को कोई देखा है कभी? लेकिन है, ऐसे भी मन के परे है बुद्धि, बुद्धि के परे है अहंकार। ये तीन वस्तु जो है ये सूक्ष्म भौतिक पदार्थ है। पांच है स्थूल पदार्थ, जैसे मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, और इसके परे तीन सूक्ष्म पदार्थ हैं, वो है मन, बुद्धि और अहंकार। और उसके भी परे, मतलब भौतिक जगत के परे, है आत्मा। आत्मा भौतिक पदार्थ से बना नहीं, आत्मा उस जगत से आए हैं। इस भौतिक जगत के परे और एक जगत है, चिन्मय जगत, आध्यात्मिक जगत, वैकुंठ लोक। आत्मा वहां से आया, और आत्मा के कारण शरीर में चेतना रहता है। हम लोग चेतन हैं, चेतना है। चेतना क्यों है? क्योंकि आत्मा है। जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तब शरीर में चेतना रहता है? नहीं। तो ये आत्मा के बारे जो ज्ञान है उसको आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। तो अधि आत्मिक, इसका शुरुआत होता है आत्मा से, आत्मा से परमात्मा, और परमात्मा से भगवान। अंत में भगवान ही है परम ईश्वर, परमेश्वर है भगवान। परमेश्वर मतलब सबके प्रभु, सबके मालिक, सबके नियंता, नियंत्रण करने वाला, वो है भगवान। भगवान के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको शास्त्र के माध्यम हम जान सकते हैं। शास्त्र मतलब जिस किताबों में आध्यात्मिक विषय का वर्णन हुआ है। ये भौतिक जगत में बहुत सारे किताबें हैं, वो सारे किताबें इस भौतिक जगत के बारे में बताते हैं, लेकिन जिस किताबों उस जगत के बारे में बताते हैं वो है शास्त्र। ये शास्त्र का और एक नाम है वेद। वेद का मतलब है ज्ञान। विद शब्द का अर्थ होता है जानना, और विद से आता है वेद, विद से आता है विद्या। विद्या ये सारे शब्द जो है ये उसका मूल है, उसका स्रोत है विद धातु। तो विद का वेद, वेद का मतलब है ज्ञान। तो ये जो ज्ञान है ये भौतिक जगत का नहीं, ये ज्ञान है उस जगत का। इस ज्ञान भगवान सृष्टि के शुरू में ब्रह्मा जी को दिए थे। ब्रह्मा जी इस भौतिक जगत के प्रथम व्यक्ति हैं। भौतिक जगत का शुरुआत जब हुआ था, सृष्टि जब हुआ था, तब प्रथम जो जीव या व्यक्ति आया था वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा कहां से आया था? ब्रह्मा भगवान के गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि कमल से आए थे। भगवान के नाभि से एक कमल उपजा था, उपजे थे, और उसमें ब्रह्मा बैठे हुए थे, विराजमान थे। तो ब्रह्मा का स्थिति वैसा था, वो आया, बल्कि उसको और कुछ पहले का कुछ जानकारी नहीं था। जैसे कभी ऐसा हो, अगर होता है हम नींद से जागा और हम सब कुछ भूल गए हैं, तो हमको कैसा लगेगा? मैं कौन हूं, क्या है, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, ऐसा होगा ना। अगर अचानक मेरा स्मृति नष्ट हो जाता है तो हमको कुछ पता नहीं रहेगा। वैसा ही ब्रह्मा का स्थिति, जैसे कि इस भौतिक जगत में जो भी आता है उसका जन्म अज्ञान में होता है, मतलब कुछ ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन बच्चा जब पैदा होता है तो उसको चेतना, उसका चेतना डेवलप नहीं होता है, चेतना नहीं है लगता है, धीरे धीरे उसका चेतना का विकास होता है, उसको ज्ञान आहरण करता है, ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन भगवान को, ब्रह्मा जी को सारी चेतना था बल्कि कुछ पता नहीं था, उनका बुद्धि विचार क्षमता था बल्कि स्मृति नहीं था। तो ब्रह्मा सोचने लगा, रे मैं कहां हूं, क्या करना है, यह मैं कौन हूं। तो ब्रह्मा सोचा कि अगर मैं देखा एक कमल पर बैठे हैं, तो सोचा कि अगर ये कमल के नीचे मैं जाऊंगा तो हमको पता चलेगा कि मैं कहां से आया, अगर मैं कहां से आया पता चलेगा तो हमको पता चलेगा कि मैं कौन हूं। लेकिन साल भर ब्रह्मा नीचे उतरने लगे, वो कमल के डांट से बाहर, लेकिन तल नहीं मिला। तो ब्रह्मा फिर से ऊपर आ गए, आकर वो कमल पर बैठ गए, और ब्रह्मा सोचने लगा अब क्या करें। तब ब्रह्मा का प्रेरणा मिला कि बाहर जाकर तो तुमको पता नहीं लगा, तो अब तुम अंतर्मुखी हो जाओ, चेतना को अंतर्मुखी कर लो। तो ब्रह्मा वैसे अपना चेतना को ध्यान के माध्यम अंतर्मुखी किया। ध्यान का मतलब होता है चेतना को अंतर्मुखी करना, अंदर की तरफ ले जाना। तो जब ऐसे ब्रह्मा जब अपना चेतना को अंतर्मुखी किया ध्यान में बैठकर, तब ब्रह्मा जी एक आवाज सुना। वो आवाज था ओम। ये ओम शब्द जो आया वो असल में भगवान का बांसुरी का शब्द था, लेकिन ब्रह्मा को लगा कि ये शब्द ओम के रूप में आ रहा, तो ब्रह्मा उसमें ध्यान लगाया। तब उस शब्द से गायत्री का उद्भव हुआ, तो ब्रह्मा गायत्री को ध्यान करने लगा। तो गायत्री के माध्यम वेद का या ज्ञान का प्रकाश हुआ। भगवान ने इस ऐसे ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। दिव्य ज्ञान का मतलब उस जगत के बारे में जो ज्ञान है। तो इस तरह ब्रह्मा को यह ज्ञान मिला, और जो ज्ञान वो ज्ञान है वेद, जिसका प्रकाश हृदय में होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तेने ब्रह्म हृदा आदि कवये मुहंती जत सूरयः। भगवान ने ये दिव्य ज्ञान ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किए थे। तो ऐसे इस दिव्य ज्ञान का मतलब उस जगत के बारे में जो ज्ञान है, ऐसे उसका उत्पत्ति हुआ। जहां हम जा नहीं सकते हैं, वहां के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा? वहां हम नहीं गया, लेकिन उस स्थान के बारे में अगर हमको जानना है तो कैसे हम जान सकते हैं? जो उस स्थान में गए हैं और वहां से जो आए हैं उसके माध्यम ही हम प्राप्त हो सकते हैं। जैसे आप लोग कहां से आए हैं? बीना से आए हैं। अच्छा, तो मैं तो बीना नहीं गया, तो अगर मैं बीना के बारे में जानना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? आपसे हम पूछ सकते हैं बीना कैसी जगह है, यहां से कितनी दूर है, वह क्या हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं, है ना? अगर हम नहीं जाते हैं, जा सकते हैं, और आप जैसे बीना के रहने वाले आदमी के साथ अगर मुलाकात ना होता तो बीना के बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो वैसे ही उस जगत के बारे में जहां हम जा नहीं सकते हैं, उस जगत के बारे में अगर ज्ञान हम प्राप्त होना चाहते हैं तो कैसे हम प्राप्त हो सकते हैं? जो वहां रहते हैं वो अगर बताते हैं, तो वैसे भगवान जो वहां रहते हैं, भगवान ने ब्रह्मा को बताया, और इस ऐसे ही ब्रह्मा जी को इस उस जगत के बारे में ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा अपना पुत्र नारद को इस ज्ञान प्रदान किया। ऐसे दो धारा में ये ज्ञान बहती है। एक धारा में कैसे इस भौतिक जगत में रहना, क्या करना, और इस जगत में रहने का उद्देश्य क्या है, ये है एक धारा जो ब्रह्मा जी ऋषियों को दिए थे। अपने ब्रह्मा जी के 10 पुत्र थे, वो सार उनमें से 9 पुत्र हैं ऋषि, और एक पुत्र है देवर्षि, वो है नारद, और जो है बाकी पुत्र जो थे वो है पुलस्त, पुलह, क्रतु, अंगिरा, मरीचि, दक्ष आदि, और सबसे कनिष्ठ थे नारद मुनि। तो और सारे पुत्रगण को भगवान ब्रह्मा जी ने इस भौतिक जगत में कैसे आचरण करना चाहिए और कैसे इस भौतिक जगत से हम मुक्ति प्राप्त हो सकते हैं, उस बारे में ज्ञान प्रदान किया। उस दो धारा को कहता है कर्मकांड और ज्ञानकांड। और नारद को भगवान के बारे में बताया और भगवान के बारे में जानकारी होने से क्या होता है, स्वाभाविक रूप से जब भगवान को हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तब क्या होता है, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देते हैं। जब पता चलता है कि भगवान है हमारे प्रभु, भगवान अगर हमारा प्रभु है तो हम कौन हूं, मैं कौन हूं, वो अगर भगवान अगर प्रभु है तो मैं हूं नौकर, भगवान है प्रभु मैं हूं नौकर, तो नौकर को क्या करना चाहिए, नौकर को प्रभु को सेवा करना चाहिए, प्रभु को निर्देश अनुसार कार्य करना चाहिए। तो कैसे कार्य भगवान के साथ संपर्क जोड़कर भगवान के लिए जो कार्य होता है उसे ही भक्ति कहा जाता है। तो नारद की माध्यम भक्ति के द्वारा प्रवाहित हो रहा है। सो ब्रह्मा से नारद, ऐसे नारद से व्यासदेव, इस धारा से, इस ज्ञान परंपरा के धारा में बह रही है। परंपरा, परंपरा का मतलब है गुरु से शिष्य और शिष्य गुरु बनकर उनके शिष्य को, वो शिष्य गुरु बनकर उनके शिष्य को, ऐसे ये ज्ञान प्रदान करते हैं। इस धारा में इस ज्ञान प्रवहमान है, बह रही है। तो ऐसे भगवान के कृपा से उस जगत की ज्ञान हमें यह मिल रहा है, वो है वेद। तो यह और एक सवाल आता है, ग्रंथ है लेकिन केवल ग्रंथ पढ़ के क्या हम ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं सही रूप से? ज्ञान प्राप्ति के सही तरीका क्या है? गुरु के मतलब शिक्षक, जो हमें समझाते हैं किताब में क्या लिखा है। आप सब ABCD जानते हैं, है ना, वर्ण जानते हैं। ABCD आप खुद सीखे हैं? ABCD जो एकदम साधारण शुरुआत है ज्ञान का, तो वो भी हम खुद नहीं प्राप्त हो सकते हैं, किसी के माध्यम हमको ये जानकारी हुआ था, है ना। जो कुछ हम सीखे हैं स्कूल में जाकर, जो कुछ हम पढ़ते हैं सीखते हैं, शिक्षक ग्रंथ को, ग्रंथ में, किताबों में जो ज्ञान है वो हमको समझाते हैं, प्रदान करते हैं। तो इसलिए वेद को शिक्षा, असल ज्ञान प्राप्त होने के लिए हमें शिक्षक या गुरु का प्रयोजन होता है। तो गुरु के पास जब हम ये ज्ञान प्राप्त होते हैं तो हमें सरल रूप से सब कुछ हम समझ लेते हैं। पहली बात, जैसे हमको ये वेद का जो सार निचोड़ है वो है भगवद गीता, जो भगवान स्वयं अर्जुन को प्रदान किए थे, भगवद गीता। आप लोग गीता पाठ करते हैं नियमित रूप से? जो पढ़ते हैं गीता हाथ उठाइए। अच्छा, यहां हम देखा नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा। और जो गीता नहीं पढ़ते हैं उनको मैं अनुरोध करूंगा, कृपा करके भगवद गीता लेकर पढ़ते रहना, क्योंकि गीता में जो ज्ञान है ये वो ज्ञान अगर हम प्राप्त हो जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल जाता है। और चरम प्राप्ति क्या होता है, सबसे बड़ा चाहना क्या है, सबसे बड़ा चाहना है मृत्यु को जय करना। मतलब अमर बनना, हम चाहते ना हम अमर हो जाए। अमर बनने के लिए कितना प्रयास करते हैं कितने लोग, लेकिन केवल ये भगवद गीता सही रूप से हम पढ़ते हैं सद्गुरु के शिक्षा के माध्यम, तब एकदम आसानी से, बहुत आसानी से हमको ये अमृत मिल जाता है। गीता अमृत, गीता के जो ज्ञान है ये अमृत, अमर बनने का ज्ञान है। जो गीता समझ लेते हैं वो अमर बन जाते हैं। कैसे, गीता के शुरुआत में, शुरू शुरू में ही हमको पता चलता है ये शरीर और आत्मा में अंतर। हमें ये जानकारी होता है कि हम असल में, हमारे स्वरूप में हम आत्मा है, है ना। ये शरीर तब क्या है, ये शरीर है एक, ये आत्मा का एक आवरण। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं, हम लोग शरीर पहने हुए हैं, आत्मा ये शरीर पहने हुए है। तो जो कपड़ा पहने हैं वो क्या आप हैं? कोई बोलेगा कि मैं मेरा कपड़ा हूं, मैं कपड़ा मेरा स्वरूप है, वैसे ही जो ज्ञानवान है, जिसके पास सही ज्ञान है, उसको पता चलता है कि वो अपना शरीर नहीं है, अपना स्वरूप में वो आत्मा है। तो गीता में भगवान पहले ये ज्ञान हमें प्रदान करते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तत्पश्चात भगवान हमें समझाते हैं कि आत्मा का गुण क्या है, आत्मा के स्वरूप क्या है। ये आत्मा का ना तो जन्म होता है, आत्मा का ना तो मृत्यु होता है। जन्म किसका होता है, ये शरीर का। कब होता है, जब आत्मा ये शरीर ग्रहण करता है। जब आत्मा आता है शरीर में, तब शरीर में जीवन आता है। आत्मा के कारण हम सजीव हैं, जीवित हैं। आत्मा के कारण ये शरीर में चेतना है। तो जन्म किसका होता है, जब आत्मा शरीर ग्रहण करता है तो शरीर का जन्म होता है। और मृत्यु किसका होता है, शरीर का होता है। कब होता है, जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है। आत्मा जब शरीर ग्रहण करता है तो शरीर का जन्म होता है, आत्मा जब शरीर छोड़कर चला जाता है तो शरीर का मृत्यु होता है। तो हम अगर समझ लेते हैं, हमको ये जानकारी होता है कि हम अगर जान लेते हैं कि हम आत्मा हैं और आत्मा का मृत्यु नहीं होता है, तब हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है, मैं आत्मा हूं अतएव मेरा मृत्यु नहीं होगा। बस अमर बन गए ना। भगवद गीता के शुरू शुरू में ही हम ऐसे अमृत प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात भगवान हमें समझाते हैं कि भगवान कौन है। सारे संसार के सृष्टि करने वाला, सारे संसार के पालन करने वाला और अंत में सारे संसार के संहार करने वाला है भगवान। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जगत का सृष्टि हम किए हैं? कोई कह सकता है, लेकिन किसी ना किसी ने तो तैयार किया ना, है ना? ना क्या ये जगत ऐसे ही सृष्टि हो गया? जगत को किसी ने बनाया है, तैयार किया है, है ना? मान लिया। मैं पूछ रहा हूं क्योंकि ऐसे कुछ आदमी हैं जो समझाने का, प्रचार करने का कोशिश करते हैं कि किसी ने किस जगत को नहीं बनाया है, ये जगत ऐसे ही सृष्टि हो गए हैं। उनका सारे काल्पनिक विचार हैं कि एक तो है कि बिग बैंग थियरी, बिग बैंग एक बड़ा शब्द हुआ और शब्द से इस जगत का सृष्टि हो गया। ये कोई बुद्धिमान का विचार हो सकता है ऐसा? हम अगर इसको दिखाकर बोलते हैं, इसको कोई तैयार नहीं किया। जय श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जय श्री श्री गौर निताय की जय, जय श्री श्री प्रह्लाद नृसिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ये क्या है? माइक्रोफोन। हाँ, तो अगर मैं कहता हूं कि ये कोई तैयार नहीं किया, आप क्या मानेंगे? हम अगर बोला कि ये एक बड़ा सा आवाज हुआ और ये आ गया, कोई मानेगा? यानी कि हम कहते हैं कि ये अचानक कुछ वस्तु एक साथ आ गया और ये माइक्रोफोन बन गया, हो सकता है? हाँ ठीक है, वस्तु तो है, लेकिन ये वस्तु को, वस्तु से इसको माइक्रोफोन बनाने के लिए कोई व्यक्ति का आवश्यकता है, किसी ने किस इसको बनाया है। तो वैसे ही हम जब विचार करते हैं, बहुत सारे चीजें हम देखते हैं। जैसे हम अगर पूछते हैं ये मंदिर किसी ने बनाया, जवाब क्या होगा? जरूर। ये नगरी किसी ने बनाया, उज्जैन नगरी। ये मध्य प्रदेश किसी ने बनाया, ये भारतवर्ष किसी ने बनाया, ये पृथ्वी किसी ने बनाया, इस ब्रह्मांड किसी ने बनाया, इस जगत किसी ने बनाया, जवाब क्या होगा? हाँ 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 हाँ। तो ऐसे अंत में अगर हम पूछते हैं ये सब सारे सृष्टि को किसी ने किया है, हाँ कौन, ये कौन, अगर हमको हो सकता है, हमको पता नहीं है, तो अगर हम जानना चाहते हैं इसको कौन बनाया, तो इसको बनाने वाला का, कंपनी का बारे में हम अगर जानना चाहते हैं, उसको ठिकाना मिलना संभव है ना? तो वैसे ही ये सारे संसार कौन बनाया, ये अगर हम जानना चाहते हैं तो जानकारी भी संभव, उनको भी पता लगाना संभव है। कैसे? उनके बारे में, ये सृष्टि के बारे में सारे सारे वर्णन है, उसके माध्यम हम जान सकते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं। और इसके भी पर आगे बढ़कर श्रीमद् भागवतम में कैसे सृष्टि हुआ है, महाविष्णु ये भौतिक जगत के प्रति जो अव्यक्त था उस पर दृष्टिपात किया, और भगवान के दृष्टिपात से ही ये जगत का सृष्टि हो गया। कैसे? भगवान के दृष्टिपात से सारे जीवात्माओं यहां आया, हम लोग यहां आया, और यहां आकर हमें ये भौतिक शरीर मिला, और हम लोग यहां आए इसलिए भौतिक जगत का प्रकाश हो गया। जब तक हम हैं भौतिक जगत प्रकाशमान है, जब हम सब यहां से चले जाएंगे होगा एक समय, मृत्यु के पश्चात हमको जानकारी नहीं रहेगा इस जगत के बारे में। जब हम देखते हैं, हम जब सो जाते हैं, इस जगत के बारे में कुछ ज्ञान रहता है? नहीं। वैसे ही नींद और मृत्यु लगभग एक ही तरह है। नींद और मृत्यु में अंतर केवल ये है कि नींद से हम ये शरीर में जाग जाते हैं, और मृत्यु के पश्चात हम दूसरे और शरीर में जागते हैं, बस ये है अंतर। तो ऐसे अगर सब लोग मर जाते हैं, होता है, होगा, जैसे भगवान के दृष्टि के माध्यम सब यहां आए हैं, और भगवान अपना दृष्टि को अगर संवरण कर लेंगे तो क्या होगा, सब वापस चले जाएंगे। तो जब यहां कोई नहीं रहेगा तो इस जगत प्रकाशमान रहेगा? नहीं, अप्रकाश हो जाएगा। तो इसलिए इस जगत का दो स्थिति है, व्यक्त अव्यक्त। भगवान कह रहे हैं गीता में, व्यक्तादीनी अव्यक्तादीनी भूतानी व्यक्त मध्यानी भारत। ये जगत अव्यक्त था, व्यक्त हुआ, प्रकाशमान हुआ, और अव्यक्ता निधनानेव, बाद में फिर से ये अव्यक्त हो जाएगा। बीच में प्रकाश हुआ और बाद में फिर अप्रकाश हो जाएगा। यह है भौतिक जगत का स्थिति। तो भगवान के दृष्टिपात से इस जगत का, इस जगत में हम सब आए और इस जगत प्रकाशमान हुआ। तो ऐसे सारे ज्ञान हमारे शास्त्र में है, इसलिए शास्त्र को अध्ययन करना चाहिए। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ाई नहीं हो रहा है इस विषय का, चर्चा होता है स्कूल में नहीं, लेकिन ये ज्ञान जो है ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इस ज्ञान प्राप्त होने से सारे समस्याएं का समाधान हो जाता है। जैसे सबसे बड़ी समस्या कौन सी समस्या है? मृत्यु है ना, और इस ज्ञान प्राप्त होने से वो समस्या का समाधान हो जाता है, और इसके साथ साथ बाकी सारे समस्याएं का समाधान। इसलिए इस ज्ञान प्राप्त होना बहुत ही जरूरी है, और बाकी ज्ञान जो है, भौतिक ज्ञान जो है, वो तब तक ही हमारे साथ रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा। चाहे हम कितने बड़े पंडित ना हो भौतिक विषय में, मृत्यु के पश्चात सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो ज्ञान जो है, ये ज्ञान आत्मिक ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, आत्मा नाशवान नहीं है। इसलिए मृत्यु के समय शरीर का विनाश होने से भी आत्मा रह जाता है, और आत्मा के साथ साथ ये ज्ञान भी रह जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि जब ये ज्ञान हम प्राप्त होकर भगवान को पहचान लेते हैं, भगवान को साथ संपर्क जोड़ लेते हैं, तो भगवान हमको अपने पास बुला लेते हैं। तो भगवान के पास जाने का तरीका बहुत ही कठिन नहीं है, बहुत सरल है, लेकिन सही रूप से हमको प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए फिर से हम आप सबको अनुरोध करेंगे सही रूप से भगवद गीता नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे, है ना? कौन कौन पढ़ेंगे? बहुत अच्छा, हरे कृष्णा। तो हम एक हिंदी भजन गाएंगे, आप सब गाएंगे हमारे साथ। ये एक सरल गान है, इस बल्कि इसका अर्थ बहुत ही गहरा है, बहुत ही सुंदर है। हम पूछते हैं ना भगवान कौन है, तो इसका जवाब यहां मिल रहा है। भगवान कौन है? कृष्णा जिनका नाम है, उनका नाम क्या है? कृष्णा। और गोकुल जिनका धाम है, गोकुल, भगवान कहां रहते हैं? गोकुल। और ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो पहचान लिया भगवान कौन है? कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। तो भगवान को जब हम पहचान लेते हैं तो क्या करना चाहिए? भगवान के पास अपने सर झुकाना है, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर देना चाहिए। इसलिए ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। जशोदा जिनकी मैया है, भगवान के मां कौन है? जशोदा। भगवान का मां का जरूरत नहीं होता है, बल्कि भक्त जब भगवान को मां बनना चाहते हैं तो भगवान बोलते हैं चलो मैं तुम्हारा बेर लाला बन जाऊंगा। जशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बपैया है, ऐसे श्री गोपाल को भगवान क्या करते हैं? गाय चराते हैं। देखो कैसी बात है, भगवान लेकिन गाय चराते हैं। इसकी माध्यम हमें जानकारी होता है कि गाय कितने इंपॉर्टेंट है, कि गाय का महत्व कितना है। भगवान खुद गाय चराते हैं। तो इसलिए हम गाय को महत्व, और ऐसे हम देखते भी है, देखिए गाय हमें कितना मदद दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। खाते हैं घास, खाती है घास और देती है दूध, और गाय से जो कुछ मिलता है सब सभी बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे गाय का जो गोबर है, आप लोग जो गांव में रहते हैं देखते हैं गोबर का कितना, गोबर कितना महत्वपूर्ण है। गाय का जो यूरिन है, मूत्र, वो भी कितना, उसमें कितना औषधिक गुण है। तो ऐसे हम देखते हैं मनुष्य और गाय के बीच एक बहुत गहरा संपर्क है। गोपाल करने से, गो को गाय पालने, सही रूप से गाय को पालने से हमको सब कुछ मिल जाता है। तो भगवान क्या करते हैं वहां वृंदावन में? गाय चराते हैं। ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी जाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है। राधा भगवान की जाया है, प्यारी है, और भगवान की माया अद्भुत है। ऐसे जो घनश्याम, उनको बारंबार प्रणाम है। भगवान क्या करते हैं? लूट लूट दही माखन खायो, चुरा चुरा कर भगवान दही और मक्खन खाते हैं। लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल बाल संग धेनु चढ़ाए। दिन भर क्या करते हैं, ग्वाल बालों के साथ गाय चराते हैं। ऐसे श्री ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है। यह भगवान की अद्भुत लीला है। इस लीला के द्वारा भगवान हमें एक बहुत सुंदर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और भगवान हमें आनंद विधान कर रहे हैं।